नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रवासी भारतीयों से देश की वैश्विक भागीदारी मजबूत करने का आह्वान किया है। श्री मोदी ने विदेश मंत्रालय के 11वें मिशन प्रमुख सम्मेलन में कल अपने विचार और सुझाव साझा किए। उन्होंने वर्ष 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए भारत की कूटनीतिक गतिविधियों पर मार्गदर्शन प्रदान किया। ये सम्मेलन 28 से 30 अप्रैल तक आयोजित किया गया। सम्मेलन में प्रधानमंत्री को भविष्य के लिए तैयार कूटनीति, व्यापार, प्रौद्योगिकी और पर्यटन को बढ़ावा देने तथा भारत की गाथा को व्यापक बनाने पर प्रस्तुतियां भी पेश की गईं। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने मतगणना केंद्रों में केंद्र सरकार के कर्मचारियों की पर्यवेक्षकों के रूप में नियुक्ति को चुनौती देने वाली तृणमूल कांग्रेस की याचिका रद्द कर दी है। न्यायमूर्ति कृष्ण राव ने कहा कि निर्वाचन आयोग के पास मतगणना पर्यवेक्षक और मतगणना सहायक की नियुक्ति का अधिकार है। न्यायालय ने कहा कि केंद्र सरकार या केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से मतगणना पर्यवेक्षक और मतगणना सहायक की नियुक्ति करना अवैध नहीं है। सरकार ने डीजल और विमानन ईंधन पर निर्यात शुल्क में कटौती की है। ये कटौती आज से लागू हो गई है। वित्त मंत्रालय के अनुसार डीजल पर निर्यात शुल्क 23 रुपये प्रति लीटर और विमानन ईंधन पर 33 रुपये प्रति लीटर निर्धारित किया गया है। पेट्रोल पर निर्यात शुल्क में कोई बदलाव नहीं किया गया है। पश्चिम एशिया संकट के कारण निर्यात को हतोत्साहित करके पेट्रोलियम उत्पादों की घरेलू उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए ये निर्णय लिया गया था। मंत्रालय ने कहा कि घरेलू खपत के लिए स्वीकृत पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा उत्पाद शुल्क दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। ऑनलाइन गेमिंग प्रचार और विनियमन संबंधी नियम 2026 आज से लागू हो गए हैं। इन्हें कल अधिसूचित किया गया था। ये भारत के तेजी से बढ़ते ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्र को विनियमित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इसका उद्देश्य गेमिंग उद्योग में नवाचार और विकास को बढ़ावा देते हुए उपयोगकर्ता की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। एकीकृत भुगतान प्रणाली UPI दुनिया के सबसे बड़े तत्काल भुगतान मंच के रूप में उभरी है। ये भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था का आधार है। इसके शुभारंभ के एक दशक बाद UPI वैश्विक तत्काल भुगतान लेन देन के लगभग आधे हिस्से को संचालित करता है। इसकी शुरुआत 11 अप्रैल 2016 को हुई थी। ये प्रणाली वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देती है, निर्बाध व्यापार को सक्षम बनाती है और डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना में वैश्विक मानक स्थापित करती है। एक रिपोर्ट।
एकीकृत भुगतान प्रणाली UPI के शुरू के पहले महीने में केवल 373 लेन देन हुए थे। UPI लेन देन वित्त वर्ष 2016-17 में 7000 करोड़ रुपए से बढ़कर वित्त वर्ष 2025-26 में लगभग 314 लाख करोड़ रुपए हो गया है। इसमें लगभग 4000 गुना से अधिक की वृद्धि हुई है। UPI से वर्तमान में प्रतिदिन लगभग 66 करोड़ लेन देन किए जा रहे हैं। इनका दैनिक मूल्य लगभग 86000 करोड़ रुपए है। UPI ने इस वर्ष मार्च में 2264 करोड़ रुपए के लेन देन के साथ अब तक का उच्चतम स्तर हासिल किया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने UPI को लेन देन की मात्रा के आधार पर दुनिया की सबसे बड़ी तत्काल भुगतान प्रणाली के रूप में मान्यता दी है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
आज बुद्ध पूर्णिमा है। आज के दिन भगवान गौतम बुद्ध का जन्म, ज्ञान की प्राप्ति और महापरिनिर्वाण हुआ था। उन्हें बिहार के बोधगया में महाबोधि वृक्ष के तले ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और गृहमंत्री अमित शाह ने बुद्ध पूर्णिमा पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। आज श्रम दिवस भी है। विश्व भर के श्रमिकों को सम्मानित करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। इसे मई दिवस के रूप में भी जाना जाता है। 1889 में यूरोप की कई समाजवादी पार्टियों ने 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था। और IPL क्रिकेट में कल रात अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 4 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज शाम 7:30 बजे जयपुर में राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स आमने सामने होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।